एक छोटी सी मकसद लेके आप सभी के सामने मुखातिब हुए हैं। आप समझ ही रहे होंगे कि आजकल पूरे भारतवर्ष में और खास राजस्थान में स्वाइन फ्लू की कहर दिनों दिन बढ़ रही है। अगर आप सरकारी आंकड़ों को देखेंगे, नजर डालेंगे, तो लगभग 16,000 से भी ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि प्रमाणित हुए हैं कि इनको संक्रमण है, और लगभग 926 लोगों ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में इस बीमारी से अपना जान गंवाया। तो ये एक्चुअली है क्या, स्वाइन फ्लू है क्या, या ये कैसे फैलती है, या फिर इसकी रोकथाम क्या है? ऐसे कई सारे चीजें हैं जिसमें हमें समझ की जरूरत है। तो आज हमारी जो मकसद है, अपना परिवार है तो आपस में बैठ के थोड़ी सी समझ बढ़ाते हैं, और ये समझ के बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप सभी मेरे से सहमत होंगे कि अगर आपको प्यास लगता है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं, है ना? लेकिन प्यास लगा इसका मतलब आप कहीं के भी पानी पियो ये तो नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं हमारे जो गार्डन्स हैं, गार्डन में हम पानी देते हैं, अगर वो पानी हम पिए और अगर हम बीमार पड़े तो गलती किसकी, हमारी खुद की। तो इस चीज को समझ कहते हैं, यानी कि ये एक हमें समझ है कि हमें पीने लायक पानी ही पीना चाहिए, दूसरा गंदा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। इसी रीति इस बीमारी के बारे में भी कई सारे समझ की जरूरत है, और ये देखा गया आमतौर पर इसके बारे में बहुत सारे अफवाह भी हैं। जैसे आज की एक एग्जांपल दो, आज ओपीडी में एक पेशेंट आए दूर से, सांचौर से, और उनके माताजी पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा कि सांचौर से आबू रोड तक तो वो ठीक ठाक आए, फिर आबू रोड में देखा बहुत सारे लोग गाड़ी से उतर के फार्मेसी में जाके मास्क खरीद के पहन रहे थे, और ये भी उतरे और इन्होंने भी मांगा कि ये दो, और मास्क पहन के ऊपर में आए, और हमने पूछा कि आपने क्यों मास्क पहना, तो हमें आंसर दिया वो माता जी ने कि ये पहनने से हमें नहीं लगेगा। हमने पूछा क्या चीज नहीं लगेगा, वो उनको नहीं मालूम, लेकिन इतना समझ है कि ऐसा अगर चीज हम पहनते हैं तो हमको नहीं लगेगा। अभी क्या नहीं लगेगा, ऐसे कई सारे चीजें हैं जिनमें आपसी समझ की बहुत जरूरत है। और हमारे बीच में हम सभी के अति स्नेही डॉक्टर सचिन है, आप फिजिशियन है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, और ये स्वाइन फ्लू के बारे में जागरूकता पैदा करना या इसकी रोकथाम या इसकी उपचार या इसका निराकरण में आपकी एक्सपर्टीज है, तो हम सभी मिलके इसकी समझ बढ़ाते हैं। डॉक्टर सचिन प्लीज।
देखते ही देखते फैल गई थी, वो एक समय था तब इस बीमारी में बीमारी ने तहलका मचाया था और वापस अब ये बीमारी आ गई है। इतना समय ये जो बीच का जो गैप था, कहीं कहीं थोड़े तादाद में लोग इससे शिकार होते रहे, परंतु जिस कदर आज के दिन या पिछले दो मास से ये बीमारी चारों ओर इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या है ये बीमारी। जैसे कि डॉक्टर ज्योति ने कहा कि अफवाहें बहुत फैलती है, तो आपको बताना चाहूंगा ये जो बीमारी एक वायरस से फैलती है, विषाणु जिसको कहा जाता है, और ये जो विषाणु है, ये जो वायरस है, हवा से फैलता है। और ये जो वायरस की एक विशेषता है कि ये हवा में अकेला नहीं फैलता, साथ साथ बहुत सारी अफवाह को लेकर फैलता है। तो इसके विषय में बहुत सारे मिथक, बहुत सारी अफवाहें जन जन में आज व्याप्त है। तो व्हेन एपिडेमिक, एपिडेमिक अर्थात महामारी, आज ये बीमारी महामारी का रूप धारण कर चुकी है, तो उसके साथ ही रूमर्स एंड मिथ्स आल्सो ट्रैवल अराउंड, और इसके वजह से जो परिस्थिति है और गंभीर हो जाती है। एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे इस बीमारी क्या है, फिर हम इसका डिटेल में विस्तार से जाएंगे।
The outbreak of the H1N1 virus has been the worst in the 5 years. the states of Gujarat and Maharashtra was affected.
इससे प्रभावित होने वाले लोगों में डॉक्टर्स, नर्सेस, नेता किसी को भी नहीं छोड़ा इस बीमारी ने। तो आज और अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 2009 से लेके तो अब तक तो 4000 के लगभग ये संख्या है। इसको पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, एक संकटकालीन स्थिति करके इसे घोषित किया गया। इस समय आप देख रहे हो सब जगह जहां तहां लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, सब जगह मास्क पहने जा रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सार्वजनिक स्थान हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, सब जगह। जो लेटेस्ट फिगर मैंने कहा 926, ये कुछ समय के ये आंकड़े हैं 2009 के, जो डेथ्स नंबर ऑफ डेथ्स जो दिखाए हैं और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो संक्रमित हुए थे उस समय। और अगर आप देखें पूरे भारत में ये बीमारी पैर पसरा हुई है और सबसे ज्यादा लोग जो संक्रमित है वो है राजस्थान में 4884, और सबसे ज्यादा डेथ्स भी जो हुए हैं, सबसे ज्यादा मौतें जो हुई है वो भी राजस्थान में है 234। उसके बाद नंबर है गुजरात का, उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, MP, तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब और बहुत सारे है। इसमें ये सारा जो डेटा कलेक्ट किया है ये आज की तारीख का डेटा है, टुडेज हेल्थ मिनिस्ट्री के। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मौतें हुई है, उसके बाद में गुजरात में। ये कुछ दिन पहले का ये आंकड़ा है, इधर की पर ये जो दो है वो आज के लिए। अगर राजस्थान में जाओ तो पिछले 24 घंटों में ये सुबह तक का आंकड़ा है, 9 डेथ हो चुकी है। और पॉजिटिव केसेस जैसे मैंने बताया है, जो कि एक किट आती है जिससे ये पता करती है, केवल ये एकमात्र जांच से ही पता लग सकता है कि ये पेशेंट पॉजिटिव, इसको स्वाइन फ्लू है या नहीं है। तो जो पॉजिटिव केसेस है वो है 4000 के अबो। अगर आप देखें जो विभिन्न जयपुर में सबसे ज्यादा है 45, उसके बाद में अजमेर 28, जोधपुर 28, नागौर में 22, ये नंबर ऑफ डेथ्स है। सीकर, कोटा, बाड़मेर, पाली, चारू, दौसा, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, टोंक, झुंझुनू, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये सारे। अभी तक सिरोही में, पिंडवाड़ा में कोई भी मौत नहीं हुई है, परंतु आज की ये जो तारीख है, आगोरोड जो संक्रमित व्यक्ति है, ये आज का न्यूज़पेपर है 26 फरवरी पत्रिका का, उसमें सिरोही में 5 लोग पॉजिटिव आए हैं इस टेस्ट जो टेस्ट की गई उससे। और एट प्रेजेंट नीचे जो आगोरोड में हमारा जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें 2 मरीज इस समय दाखिल है, वो संदिग्ध है, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है किसी भी जांच से उनको ये संक्रमण होने की। तो और पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि इसके जो भी लक्षण है वो कोई अलग से लक्षण नहीं है, सामान्य फ्लू जैसे सर्दी, बुखार, खांसी, यही इसके लक्षण है। और जब तक आप ये जांच नहीं करोगे तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये स्वाइन फ्लू है या स्वाइन फ्लू नहीं है। तो इसके वजह से, और ये जो टेस्ट है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ये कैसी टेस्ट है और कहाँ होती है। अगर आप जाए जयपुर, तो जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज है, चाहे जोधपुर का SN मेडिकल कॉलेज या फिर अजमेर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि यहाँ के जो सरकारी अस्पताल है, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में इस ये आलम है कि वहाँ पर लोगों को मतलब इतने हजारों में वहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं और उनके पास बिस्तर नहीं है, बेड्स नहीं है, वहाँ से पेशेंट रेफर किए जा रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स भी संक्रमित है। यहाँ तक कि जो SMS मेडिकल कॉलेज का जो ICU है उसके जो चीफ इंटेंसिविस्ट है, जो वो खुद ही इस समय पॉजिटिव है और इस समय घर पे आराम कर रहे हैं। जो SMS मेडिकल कॉलेज को ICU इंचार्ज जो है वो खुद ही संक्रमित है, क्योंकि ये बीमारी जो फैलती है ये खांसी से और छींक से फैलती है, हवाओं से फैलती है। इसके वजह से देखेंगे इसके लिए स्पेशल OPD रन की जा रही है, जो कि SMS मेडिकल कॉलेज है उसके सामने का जो गैरेज था गाड़ियों को रखने का, उसको OPD बनाया गया है इस समय। जो SMS मेडिकल कॉलेज है वहां पर स्पेशल वार्ड, क्योंकि इन पेशेंट्स को अलग थलग रखना होता है, क्योंकि ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बहुत तेजी से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेजी से फैलती है। तो स्पेशल वार्ड, स्पेशल OPD, कुछ टास्क फोर्स गठित किए गए हैं, डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, जिसमें कि कुछ टीम बनाई गई है, वो गांव गांव में जाकर पूछताछ कर रही है कि किसी घर में खांसी तो नहीं है, किसी को दुकान तो नहीं है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, एएनएम वर्कर, इस तरह से इतना सब कुछ होते हुए भी ये बीमारी तेजी से फैल रही है। ये एक दृश्य है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर का।
शहर की बात किया तो शहर में भी बार बार ये चिकित्सा विभाग की तरफ से कहा जाता रहा कि यह सभी छह दिनों से मृत्यु को भेजा जाता है और जिनकी जांच के बाद में उपचार भी किया जाता है।
फिर बात करें नागौर की, तो नागौर के अंदर करीबन 500 मौत हो चुकी है चैन ग्रुप को लेकर, लेकिन हमें इंतजाम के लिए हम बात करें तो नागौर में लेकर तो चैन ग्रुप को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। अस्पतालों के अंदर लार्ज ग्रुप बनाए थे, लेकिन वहां पर जो जांच की जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल बेहतरीन नजर नहीं आ रही। अगर बात करें तो पूरे प्रदेश के अंदर चैन ग्रुप के जो रोगी है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको लेकर ग्रामीण इलाकों के अंदर
निःशुल्क हो गई है, और अगर कोई खुद से करना चाहता है वो जांच तो कम मिनिमम 500 रुपीस, परंतु वही पेशेंट जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता है तो वही जांच उसको लगभग 10,000 रुपीस में वहां पर जो भी निजी कंपनी है निजी लैब है वो उसका फायदा उठा रहा है। तो इस तरह की ये सिचुएशन है एट प्रेजेंट। हमारे कोई दूर के पहचान के है दिल्ली में कि उनके पिताजी को 15 दिन तक आईसीयू में रखा गया, 15 दिन तक उनको जो सिम्टम्स थे सर्दी खांसी बुखार, और उनको कहा गया कि स्वाइन फ्लू हो सकता है, 15 दिन आईसीयू में रखा गया निगरानी में, 15 दिन के बाद जब डिस्चार्ज हुआ उसका बिल था 8 लाख रुपए और कहा कि स्वाइन फ्लू नहीं है। तो दोनों ही स्वरूप सामने आते हैं जब इस तरह की बड़ी बीमारियां या बड़े स्तर पर फैलती है इस तरह की बीमारी। तो अभी हम वापस देखेंगे जो हमने देखा स्वाइन फ्लू के बारे में, क्या है आखिर ये स्वाइन फ्लू और कैसे होता है।
सर्दी और बारिश में स्वाइन फ्लू का ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। डॉक्टर के मुताबिक बदलते मौसम में H1N1 वायरस तेजी से पनपता है और इसीलिए इसके मरीज होना जाम होना छींके आना ठंड लगना और बुखार आना गले में खराश रहना नींद में कमी थकावट महसूस होना सिरदर्द महसूस होना आंखें लाल हो जाना शरीर में दर्द और मांसपेशियों में अकड़ कफ की शिकायत होना लगातार खांसी आना ऊपर बताए गए लक्षण अक्सर बदलते मौसम में लोगों में देखने को मिलते हैं लेकिन ऐसे लक्षण देखने पर लापरवाही करने की बजाय तत्काल डॉक्टर से मिलकर जांच और इलाज करवाना चाहिए ताकि स्वाइन फ्लू की दिक्कत होने पर समय से इलाज शुरू किया जा सके गवर्नमेंट ज्यादा सतर्क रहेगी हृदय रोगी डायबिटीज रोगी अथवा से पीड़ित रोग फेफड़े की समस्या से पीड़ित किडनी संबंधी समस्या से ग्रस्त रोग इसके साथ ही स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए कुछ एहतियात रखना भी जरूरी है ये एहतियात बरतें मास्क या टिश्यू पेपर का प्रयोग करें लोगों से हाथ मिलाने और चूमने से बचें पीड़ित व्यक्ति से एक मीटर की दूरी पर रहें बिना खुले हाथों से आंख नाक या मुंह को ना छूएं कहते हैं सावधानी रखें तो कई परेशानियों से बचा जा सकता है इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सख्त लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है
तो आपने देखा इसके जो लक्षण हैं कोई विशेष नहीं और भारत जैसे देश में सर्दी खांसी बुखार ये तो बहुत ही सामान्य चीज है परंतु इसके जो लक्षण हैं अगर किसी को होता है तो सर्दी बुखार खांसी परंतु अगर वो ठीक नहीं हो रही है या बुखार है परंतु थोड़ा तेज बुखार है थोड़े इसके लक्षण उससे तो ऐसा बताया नहीं जा सकता केवल लक्षणों के आधार पर वो तो जांच से ही पता चलता है कि ये स्वाइन फ्लू है ये स्वाइन फ्लू नहीं है परंतु फिर भी अगर बुखार ठीक नहीं हो रहा है खांसी ठीक नहीं हो रही है नाक बहना ठीक नहीं हो रहा है बुखार तेज हो रहा है उस समय वो स्वाइन फ्लू हो सकता है संदिग्ध जिसको कहते हैं सस्पेक्टेड अभी ये जो वायरस है इसका नाम है H1N1 वायरस ये वायरस बड़ा ही खूबसूरत है दिखने में आप देखेंगे इसके पहले भी वीडियो में आपने देखा पर जितना ही वो सुंदर है उतना ही वो खतरनाक भी है तो ये जो वायरस है H1N1 एक होता है इन्फ्लुएंजा वायरस जो फ्लू वायरस होता है जो कि सर्दी खांसी होती है उसका जो कारण है फ्लू जो कि एकदम ही सामान्य है अभी ये जो वायरस है ये ऐसा वायरस है कि ये अपना रूप बदलता है जो वायरस पहले था वो आज नहीं है शायद ऐसा भी हो सकता है उसको एक प्रोसेस कहा जाता है उसे म्यूटेशन कहा जाता है तो इस समय जो H1N1 वायरस है जो कि 2009 में आया था वो तो चिड़िया सुअर और इंसान इन तीनों के जेनेटिक मटेरियल माना ये जो वायरस है वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जीन जेनेटिक मटेरियल के अंदर डीएनए होता है वो तीनों डीएनए से मिलकर जो मिश्रित फॉर्म है उसका वो है H1N1 वायरस और स्वाइन अर्थात जैसे कि खास सुअर तो इसको पिग इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं हॉग इन्फ्लुएंजा कहते हैं पिग फ्लू भी कहते हैं ये अलग अलग नाम है जो कि सुअर से होता है अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है तीन प्रकार का ए बी और सी और इस समय जो H1N1 है वो है ए टाइप का ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए ये जो एच और वन ये जो वायरस है ये खुली आंखों से तो इसको देखा नहीं जा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है और ये जो वायरस है इसके ऊपर ये इस तरह के कुछ जो बनाए हुए हैं उसको एक तो एन कहा जाता है जिसको हम न्यूरामिनिडेज कहते हैं जिसके 9 अलग अलग प्रकार है और एक होता है एच जिसके 16 प्रकार है तो इस समय का जो वायरस है वो H1N1 तो ये जो वायरस है एक एक नया अवतार लेता है जैसे नया रूप धारण करता है अभी H1N1 है वो H2N2 भी हो सकता है वो H3N3 भी हो सकता है इसके लिए अभी हमारे पास H1N1 के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध है जरूरी नहीं कि वही अगर वो अपना रूप बदलते तो वही दवाई कारगर होगी जरूरी नहीं इसके लिए जो भी टीका इसके जो बने वैक्सीन्स जिसको हम कहते हैं वो कितने प्रभावशाली होंगे बता नहीं सकते तो अभी तक जो अफवाहें चल रही थी कि 2009 का जो वायरस था और 2000 अभी का जो वायरस है इसने अपना रूप बदल दिया कई समय तक अब तक 2 मास तक पेपर में यही खबरें आ रही थी कि शायद वायरस ने अपना रूप बदल दिया, इसके लिए इतने लोगों की मौतें हो रही है, कई लोग सरकार को दोषी आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, विपक्ष का सत्ता के ऊपर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी खबरें न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं। परंतु अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे से, जो कि म्यूटेशन एक्सपर्ट है और डिसीज कंट्रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट दिल्ली से, उसने कहा है कि जो वायरस 2009 में था वही वायरस है। इसके लिए जो इसकी जो गोली है, जो दवाई है टैमिफ्लू, वो अभी भी प्रभावशाली है, परंतु फिर भी मौतों की संख्या बढ़ रही है, लगातार ये सिलसिला जारी है और ये वायरस अपना कहर अभी भी बरपा रहा है। इसका कारण है, इसके बहुत सारे कारण है, सबसे मुख्य कारण है कि लोग जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंच रहे, जो कंडीशन में आ रहे उस वायरस से, ये जो वायरस है एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको कहते हैं, उसको अफेक्ट करता है। तब तक पेशेंट को निमोनिया हो चुका है, तब तक फेफड़ों में बहुत सारी खराबी आ गई है, पेशेंट आ रहे हैं और उनको सीधा वेंटिलेटर पर डालना पड़ रहा है और फिर दूसरे दूसरे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह से पेशेंट्स बच नहीं पा रहे। और दूसरे और बहुत सारे कारण हैं उनको और देखेंगे, तो ये इस तरह का ये मामले, ये मेडिकल की बात है, ये वायरस है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है जो कि H1N1 जिसको हम इस समय पे कह रहे हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि ये जो वायरस है, सुअर, चिड़िया और इंसान, इन तीनों से मिलकर, तीनों का जो वायरस है उसका एक नया रूप है। हाँ, वो भी हम देखेंगे। ये जो वायरस है इसका जो समय है वो है ठंडी का मौसम और बारिश का मौसम। जैसे ही गर्मी चालू हो जाएगी ये वायरस गर्मी में जिंदा नहीं रह सकता। अभी 2 दिन पहले की खबर थी कि वायरस अभी इसका प्रभाव कम हो जाएगा, पर 2 दिनों से वापस थोड़ी सी हवा बहने चालू हो गई, 2 दिनों से तो ये वापस बढ़ रहा है। तो फिर भी इसमें जो भी एक्सपर्ट्स है, विशेषज्ञ है, उनका ये मानना है कि जैसे गर्मी चालू हो जाएगी इसका प्रकोप जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस गर्मी में जिंदा नहीं रह सकता। और जैसे कैसे ये फैलता है, तो ये जो फैलता है हवा पर सवार होकर चारों ओर दौड़ लगाता है, जैसे ये वायरस छींक से, खांसी से, ये उसके माध्यम है जिस तरह से वो चारों ओर फैलता है। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति खांसी कर रहा है तो तुरंत उसके जो द्रव्य कण है या जहां गिरेंगे, अगर ये कुर्सी पर उसके द्रव्य कण गिरते हैं, मैं इसको हाथ लगाऊ तो मुझे हो सकता है, वो फिर वो कमोड हो, फिर वो कीबोर्ड हो, फिर वो टॉयलेट हो, फिर वो आपका स्टेयरिंग व्हील हो, कुछ भी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, किसी भी संक्रमित व्यक्ति द्वारा वो वस्तु अगर छू ली गई है और इसे कोई दूसरा व्यक्ति अगर छूता है तो उसे वो बीमारी होने की संभावना रहती है। इसके वजह से ये इतना खतरनाक है, इट्स मोस्ट डेंजरस, ये एक ही कारण है। कोई अगर छींके तो हजारों लाखों रक्त उसके जो कण है वो हवाओं में जा रहे हैं, और जो भी व्यक्ति, क्योंकि ये जो वायरस है कहाँ से शरीर में जाता है, उसके दो है, एक तो मुंह और नाक, मुंह से जाएगा या तो नाक से जाएगा, और दूसरा सलाइवा, वो सब बातें तो है पर मुख्य है तो कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी जो चीजें हैं, या फोमाइट्स, फोमाइट्स मतलब हर वो चीज, जैसे ये चेयर है, यहाँ पे अगर कोई बैठा और जिसके हाथ वहां लग गए और मैं बैठता हूँ, मुझे, मैं भी वहां स्पर्श करता हूँ और फिर मुंह को हाथ लगाता हूँ तो वो वायरस अंदर चला जाए, और वायरस अगर आज मेरे शरीर में जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसके लक्षण चालू होते हैं। लक्षण चालू होने के 24 घंटे पहले तक, पहले से ही मैं जैसे संक्रामक हो जाता हूँ, इन्फेक्शियस हो जाता हूँ, जिससे मेरे वजह से किसी और को हो सकता है। कब तक हो सकता है? 7 दिन तक। जहां पे भी मैं खांसी करूंगा, जहां पे मैं छींकूंगा, तो जो निकलेगा वायरस उससे जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उन सबको वो हो जाएगा। इसके यही एक कारण है कि इसकी वजह से तेजी से फैल रहा है। इसके लिए जो भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है उनको कहा जाता है कि घर पे ही रहे, जो कि पॉजिटिव आए हैं घर पे ही रहे, वो हम देखेंगे प्रिकॉशंस में क्या क्या करना है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ये सबसे मुख्य है। अभी ये वायरस तो आता है सुअर से, सुअर से इंसान में आता है, परंतु एक बार इंसान में आ गया, इंसान से इंसान, ह्यूमन टू ह्यूमन बहुत तेजी से फैलता है।
Swine flu is a respiratory disease of pigs caused by the influenza virus. Usually, the virus does not affect humans, yet transmission can sometimes occur in persons with direct exposure to pigs. The current outbreak has been caused by human-to-human transmission. Step 2. Swine flu is spread between humans like a cold. A person can catch it by being sneezed, coughed, or breathed on by a carrier, or by touching a surface that has the virus on it. and then touching their nose, eyes, or mouth. Direct contact with infected pigs can also transmit the virus to people and vice versa. So far, no other animals can transmit the virus to humans. You cannot get swine flu from eating cooked.
Transmission. जो लोग सुअर के ज्यादा संपर्क में आते हैं उनको ये डायरेक्ट हो सकता है, एक तो जो मैंने बताया इंसान से इंसान को, और दूसरा है इस सुअर से डायरेक्ट संपर्क में अगर आता है कोई व्यक्ति या उनके साथ रहता है, उनकी देखभाल करते हैं, वो सब जो भी व्यक्ति है उनको ये खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और कोई दूसरा प्राणी नहीं है जिससे ये हो सकता है। दूसरा और एक प्रश्न है कि क्या कई देशों में लोग सुअर का मांस खाते हैं, पर वो सुअर का मांस खाने से ये नहीं होता है। फिर भी भारत में भी कई जगह पर जैसे आंध्रा में ये जहां जहां ये दुकानें हैं सुअर का मांस जो बेचते हैं वो दुकानें भी अभी बंद हो गई, परंतु वो खाने से वो ये नहीं फैलता। क्या कहा? और दूसरी जगह है, कौन सी जगह पे ये फैलता है? जहां बहुत भीड़ भाड़ है वही जगह पे, हवा से एक तो, और दूसरा जहां बहुत भीड़ भाड़। इसलिए आज की न्यूज, आज का जो न्यूज पेपर है उसमें एक खबर है अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद में नियम 144 लागू हुआ है इंडियन पीनल कोड का। इस नियम के, इस धारा के तहत एक जगह पर 5 व्यक्ति इकट्ठा नहीं रह सकते। आज की तारीख में ये नियम, ये धारा लागू हुई है अहमदाबाद। 5 लोग, उसमें 2 चीजें हैं, एक तो शादी और उन्मैयत या जनाजा, वो जो जुलूस है वो इस धारा की परिधि से बाहर है। केवल ये जैसी है, अगर आप कोई प्रोग्राम करते हैं, संगठन करते हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अधिकारियों से, गवर्नमेंट से। ये आज लागू हुआ, पर कई लोगों ने इसका फिर विरोध किया कि कानून इस स्वाइन फ्लू को नहीं रोक सकता, कानून को मत लाओ बीच में। इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही है स्वाइन फ्लू पर। हर दिन आप अगर न्यूज पेपर पढ़ो तो अलग अलग चीजें अलग अलग दिन आपको पता चल रही है। तो ये क्राउडेड प्लेसेस जो है वहां वो ज्यादा फैलती है। की कैरेक्टरिस्टिक ये तो मैंने आपको बता दिया है। इनक्यूबेशन पीरियड 7 दिन तक बच्चों में, थोड़ा जल्दी। अभी किस तरह के सिम्टम्स ये भी हमने देख लिए, सर्दी, खांसी, बुखार, कभी दस्त, कभी उल्टी, बदन दर्द, ऐठन, ये सारे इसके सिम्टम्स है, जैसे सामान्य इसके सिम्टम्स होते हैं।
स्वाइन फ्लू के लक्षण यूं तो आम फ्लू की तरह ही होते हैं। स्वाइन फ्लू का वायरस सुअर से फैलता है, इससे पहले पीड़ित शख्स का गला खराब हो जाता है और फिर खांसी के बाद तेज बुखार हो जाता है। मरीज को पेट में दर्द जैसी शिकायत भी होती है। अगर वक्त पर इलाज ना हो तो फिर मरीज की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और देर होने पर दवाओं का असर भी खत्म हो जाता है।
ज्यादा खतरा किन लोग, तीन मुख्य तीन लोग हैं, एक तो बच्चे, दूसरा गर्भवती महिला, वो भी तीसरे चरण में गर्भावस्था के, तो थर्ड वीक, और वृद्ध 65 के, वो जो लोग हैं, ये तीन मुख्य लोग हैं जिनको ये बीमारी बहुत तेजी से हो सकती है। फिर बहुत सारे दूसरे लोग हैं जैसे जिसको पहले से ही बीमारी है, डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, जिनकी अंदर की प्रतिकार शक्ति कम है, उनको ये बहुत जल्दी से हो जाएगा। इसके लिए ऐसे लोगों ने थोड़ा भी सर्दी खांसी अगर हुआ तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। अभी कैसे कंफर्म, कैसे मानेंगे, कैसे कहेंगे कि ये स्वाइन फ्लू है और ये नहीं है? तो कंफर्म केस मतलब पुष्टि तब होगी इसकी, जो टेस्ट है पीसीआर जब पॉजिटिव आया, और भी टेस्ट है पर मेन है पीसीआर, ये अगर पॉजिटिव आया तो ही कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल हॉस्पिटल में इसकी सुविधा नहीं है, ना ही यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ना ही आबू रोड में है। अगर कोई खून के नमूने अगर हमको भेजने हैं तो वो सीधा उदयपुर मेडिकल, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में भेजना है, या फिर जोधपुर में भेजना है, या दूसरा ऑप्शन है कि अगर हमको बहुत ज्यादा डाउट है तो सीधा ट्रीटमेंट चालू करना, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। परंतु ये जो जिस तरह से आप देख रहे हो मीडिया इसको एकदम ऐसे उछालता है कि जैसे पता नहीं क्या है ये, वो मीडिया के जो न्यूज चैनल देखकर ही कोई डर जाए कि जैसे ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। परंतु अगर देखा जाए इतनी डरने की बात नहीं है, डर से ही ज्यादा ये होता है। इस तरह से वो निमोनिया होता है, इस तरह से फेफड़े पूरे खराब हो जाते हैं, और जब पेशेंट अगर कोई इस कंडीशन में आता है, इस कंडीशन में आता है, ये जो काला जो दिख रहा है आपको ये हवा है, ये हवा होनी चाहिए, जो सफेद है वहां पर वो पूरा निमोनिया हो गया। जब ऐसे कंडीशन में पेशेंट आता है तो इतना सीरियस होता है, उसकी सांस फूलती लगती है, उसको सीधा वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। इवन वेंटिलेटर पर डालने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, बहुत सारे हायर एंटीबायोटिक्स, कुछ भी करो, एक के बाद एक बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और डेथ। इसके लिए जितने पेशेंट्स जो जिनकी मौत हो रही है उसका कारण है ये इस तरह के फेफड़े में जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो। अभी टेस्ट, जैसे मैंने कहा RT-PCR उसका टेस्ट है, जो मेन टेस्ट है ये PCR। इसके लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया की भी जरूरत होती है, हमने मंगाया अभी तक आया नहीं है। ये तो आपने देखा कि ये बीमारी सुअर से फैलती है, सुअर से आती है, और एक बार इंसान को होगी तो एक इंसान से सब जगह फैलती है। अभी ये सुअर से कैसे फैलती है, ये एक बार जो कि सुअर के कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं, जो सुअर को जैसे पालते हैं उनके साथ रहते हैं, उस एक भी व्यक्ति को अगर हो गया, वो एक भी व्यक्ति अगर आ गया यहाँ पर तो सबको हो जाएगी, क्योंकि वो एक बार भी खासेगा जो उसके संपर्क में आएगा सभी को ये बीमारी हो जाएगी, और एक के बाद दूसरा। और लोग यहाँ से वहां ट्रेवल करते रहते हैं, चाहे बस में जाए, चाहे फ्लाइट में जाए, चाहे ट्रेन में जाए, जितनी बार वो खासेगा अगर कुछ रुमाल नहीं रखता है या ऐसे ही खासता है तो सबको हो जाती है। तो गाइडलाइन ये तो हमने देखी। सबसे मुख्य अभी क्या क्या करना चाहिए हमको एहतियात के तौर पर, सबसे पहले कि जब भी आप खांसे तो मुंह और नाक, अगर किसी को खांसी होती है तो एक तो टिश्यू पेपर या रुमाल रखें, और बार बार खांसने के बाद हाथ को धोना। ये हाथ को धोने का जो चीज है हैंड वॉशिंग, दिस इज द बेस्ट प्रिकॉशनरी मेजर कहा हुआ है। तो बार बार हाथों को धोना। फिर जो लोग इस ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको हो गया है उससे थोड़ा दूर रहना, जो संक्रमित व्यक्ति है उस संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना, उसके ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं आना, हाथ लगाना, गले मिलना, ये सब नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा तेजी से ये फैलता है। पर जो लोग इनके संपर्क में और जिनको जो लोगों को इनको ट्रीट करना है, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, हॉस्पिटल स्टाफ है, उनके लिए तो बहुत सारी बातें, उनको गॉगल्स पहनो, शू कवर पहनो, हेड कवर पहनो, मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, और ये जो मास्क है ये भी कोई सादा मास्क नहीं है। इस मास्क के भी ये बहुत सारी खबरें न्यूज़पेपर में आ रही है, जैसे मास्क अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ये मास्क नहीं है, उसके लिए लोग बड़े असंतुष्ट है, लोग बड़े दुखी है। फिर इसके भी सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में ये नहीं है, उनको मिल रहे हैं, हमको नहीं मिल रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी बातें चल रही है। तो ये मास्क है, एक स्पेशल टाइप का मास्क है जिसे N95 मास्क कहा जाता है, जिससे कहा जाता है कि, और उसकी कीमत भी लगभग 100 रुपये लगभग उसकी कीमत है। तो बहुत सारे अस्पतालों में तो निःशुल्क दिए जा रहे हैं, परंतु और ये मास्क भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि एक बार पहन लिया तो हो गया, उसको भी 6-6 घंटे में बदलना होता है, नहीं तो वो पहनने के बाद में भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ रख नहीं रहे। अब उनका निर्देश, जो सरकार का निर्देश है, जो भी उन्होंने कुछ ही हॉस्पिटल कहे कि यहीं पर उसकी ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि एक स्वाइन फ्लू के पेशेंट की ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर स्टाफ जो भी हो पूरा ओवरऑल हम दिखाएंगे आपको, इस तरह का ड्रेस उनको पहनना पड़ेगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव डिजाइन, एक तो सबसे पहले गॉगल, एक स्पेशल प्रकार के गॉगल होते हैं वो पहनना होता है, ये वो मास्क है जिसको N95 मास्क कहते हैं। ये है ओवरऑल गाउन, अगर आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो इस तरह का कंप्लीट गाउन पहनना होता है। सब कुछ ये तो फोटो है, हाथ में ग्लव्स जब पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तब, तो इधर शूज से लेके तो गाउन से लेके तो मास्क से लेके तो सब कुछ फुल कवर्ड। ऐसी सिचुएशन में रहेंगे तो ही आप स्वयं को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जिनको जोखिम है वो है डॉक्टर्स, और इसके लिए देखा है कुछ डॉक्टर्स की भी मौत हो गई, नर्सेस, जयपुर की जो हॉस्पिटल की नर्स है उसकी भी डेथ इस वजह से हुई। तो ग्लव्स, फिर शू कवर, इस तरह का इनको पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस कहा जाता है। फ्लू किट, ये पूरी किट मिलती है इसकी। और जैसे मैंने कहा हैंड वॉशिंग, ये सबसे इफेक्टिव वे है, क्योंकि ये जो वायरस है हाथ में 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है। अगर हाथ में अगर है ये वायरस तो 30 मिनट में वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु वो 30 मिनट के अंदर वो उसने कुछ टच किया और वो उधर से उधर और उधर से उधर सब जगह फैल जाए। तो हाथ धोना ये सबसे मुख्य चीज है। इसमें एक शॉर्ट वीडियो है जो आपको दिखाएंगे हाथ किस तरह से धोना है।
Now I'm going to demonstrate you the steps of proper hand washing. Opening our soap and water it can be a person you see in hand or a pen and closer. Okay. First thing is we have to roll out our sleeves or the sleeves or uniform and do your elbow. Okay. And then remove your jewelry.
साबुन से हाथ धोना पर्याप्त है इसको नष्ट करने के लिए। आपके पास अगर ये हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो कोई भी साबुन से नष्ट हो
जाता
है। इस तरह से हाथ को रगड़ना है।
हमारे हॉस्पिटल में आई थी ये दो दिन में खत्म हो गई।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, सब जगह निशुल्क कर दी गई है, परंतु ये भी है कि इसके ऊपर भी बहुत सारे सरकार के ऊपर आरोप है कि इसकी उपलब्धता नहीं है, सरकार बहुत लेट जागी है, पहले ही सब कुछ कर देना चाहिए था। विपक्ष ने ऐसे बहुत सारे सत्ताधारियों के ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, करना जारी है उस तरह से। तो ये जो बीमारी है इसके, और ये जो गोली है तो 38 घंटों के अंदर चालू हो जानी चाहिए, तो ठीक होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। टैमीफ्लू ये उसका नाम है गोली का, टैमी, और इसका डोज है ये इस प्रकार की ये आता है 75 मिलीग्राम की, दिन में दो बार देनी है 5 दिन। फिर ये हॉस्पिटल्स के लिए है क्या क्या करना है, अगर हॉस्पिटल अगर पेशेंट के सिम्टम्स ठीक नहीं होते तो उसको एडमिट करना होता है, और बहुत सारे, और अगर घर पे ही मैनेज करना है तो पौष्टिक आहार लेना है, ऐसे बहुत सारे काढ़े हैं और बहुत सारे होम्योपैथिक दवाई भी निकले हैं कि जैसे ये खा लो, इसका काढ़ा, उसका काढ़ा, तो ऐसे बहुत सारे, उसका कोई प्रमाणित नहीं है वो, पर आप जितने नए नए लोगों के पास जाएंगे नए नए लोग कुछ ना कुछ आपको देंगे, ये काढ़ा पी लो तो इससे ठीक हो जाएगा, वो काढ़ा पी लो तो ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारा पानी पीना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है, अगर किसी को हो गया तो उससे थोड़ा दूर रहना है, अगर किसी को थोड़े भी सिम्टम्स लगते हैं आपको तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना।
इस स्वाइन फ्लू से अपने आप को आप कैसे बचा सकते हैं, तुलसी अदरक हल्दी का काढ़ा पिया जा सकता है, गिलोय की घी को पानी में उबाल कर आप पी सकते हैं, हल्दी को भूख के साथ उबाल कर पिया जा सकता है, ये तमाम घरेलू उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं स्वाइन फ्लू को अपने आप से दूर रखने के लिए। आधा पाउडर को पानी में मिलाकर पिए, घर का ताजा खाना खाए और पानी ज्यादा पिए, सभी तरह की दालें खाई जा सकती है, इससे एक प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में बढ़ेगी जिससे स्वाइन फ्लू को दूर रखा जा सकता है।
इबुप्रोफेन एक्सेस जैसे मैंने कहा क्लोज कांटेक्ट पे है, वो भी आपको गोली वहां पे आधे डोज में चालू कर देनी है 75 मिलीग्राम की। तो इसमें तीन कैटेगरी है पेशेंट्स की, एक तो वो पेशेंट्स की जिनको हल्का सा भूखा है, उन्हें किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें किसी जांच करने की जरूरत है, वो घर पे ही रहे और अपना ध्यान रखे, नो टेस्टिंग रिक्वायर्ड, ये है कैटेगरी वन, ये गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए निर्देश है। दूसरा है कैटेगरी बी जिसमें सिम्टम्स थोड़े ज्यादा है, हाई ग्रेड फीवर, तेज बुखार है और गले खराश है पर वो ठीक नहीं हो रही, अभी 3-4 दिन हो गए, उनको कहा गया है टेस्ट की तो जरूरत नहीं पर यहाँ पर ट्रीटमेंट चालू की जा सकती है। और तीसरी जो कैटेगरी है उसमें थोड़ा पेशेंट थोड़ा ज्यादा सीरियस है, जिसमें पेशेंट बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ है, उसको बलगम आ रहा है और बीपी कम हो गया है, इस तरह का जो है उनको तो एडमिट करने की जरूरत है, टेस्टिंग की जरूरत है और ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता है। तो ये तीन कैटेगरी यहाँ बताई है। अभी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है टीकाकरण, वैक्सीनेशन का, कि इसके बारे में भी बहुत सारी अफवाहें आ रही है। पहले तो ये था कि ये वायरस चेंज हो गया है, इसके लिए ये जो टीका है ये काम करेगा नहीं, परंतु जो टीका उपलब्ध है वो H1N1 का नहीं है मार्केट में, वो इन्फ्लुएंजा का टीका है, परंतु जो कंपनी है फार्मा कंपनीज और ये उसको ऐसे बेच रहे हैं कि ये H1N1 का टीका है, स्वाइन फ्लू का टीका, परंतु वो स्वाइन फ्लू का टीका नहीं, वो इन्फ्लुएंजा का टीका है, और ये टीका लेने के बाद में भी पूर्ण सुरक्षा नहीं है। और ये एक टीके की कॉस्ट अगर देखे जाए तो 1000, पर इसको बेचने वाले अपने मर्जी से जितना चाहो उतना कीमत में इसको बेच रहे हैं। तो ये जो वैक्सीनेशन है कहते हैं मतलब जो पेशेंट्स के ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं उनके लिए जरूरी है, पर वो कितना काम करेगा, कितना इफेक्टिव है किसी को नहीं पता, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा आदेश नहीं आया कि ये सब ले, इस तरह के अलग अलग ये आते हैं, और वो कितना सेफ है उसके बारे में भी संदिग्ध है सब कुछ अब तक। तो लेट्स गेट टुगेदर टू सेव द वर्ल्ड, स्प्रेड द मैसेज ऑफ फ्लू टू एवरीवन। और बहुत सारे प्रश्न हैं, ये तो यहाँ प्रेजेंटेशन में एंड करता हूँ, आपको अगर कुछ प्रश्न हो गए तो वो भी आप पूछ सकते हैं, पर उसके पहले हमारे हल्दर भाई एक बहुत सुंदर गीत बनाया है उन्होंने जागरूकता के बारे में, तो जागरूकता और सावधानी ये दो ही बातें हैं स्वाइन फ्लू से बचने के लिए, तो इसी भाव से उन्होंने गीत बनाया है, वो आपको गा के सुनाएंगे। एक मिनट पहले इनका सुनते फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ। इसमें तेज बुखार आता है, तेज बुखार, बहुत तेज, ये मैं जब पढ़ रहा था मुझे एक सितंबर 2013 की मुरली याद आई जिसमें बाबा ने कहा था अगर किसी को तेज बुखार हो तो भी मुरली पढ़ो, मिस नहीं करना है, फिर भी मुरली पढ़ो। और योग से तुम्हारा दर्द कम होगा।
शांति, डॉक्टर साहब ने जो बताया है कुछ छोटे से शब्द में गीत के आधार पर मैं सुनाना चाहूंगा आप सब लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए।
जिस प्रकार लोग डरा रहे हैं ये कोई डरने की बात नहीं है। कैसे वो सुनते हैं?
डरने की क्या बात है, बस परहेज की तो है बात। अफवाह ना फैलाओ प्यारे, सुन लो मेरी बात। घर पर इलाज मुमकिन है, वक्त रहते जांच कराए। रहन सहन और खान पान का थोड़ा कर ले सुधार। रोक थाम हो स्वाइन फ्लू का, हो जाओ तैयार। सारने वाला ये होशियार हो मेरे यार।
बहुत सुंदर। एक या दो प्रश्न खाली किसी को अगर पूछने हो तो।
अभी होम्योपैथिक दवाई सबको दिया ना दो दो।
हाँ वो ठीक है, अभी होम्योपैथिक वाले में मैं इतना ज्यादा नहीं बोल सकता। ऑप्शन है।